ये सब चीज है, सब मिलाकर के इसका मूल्य 50,000 रुपया है। और 50,000 का मूल्य में घाटा होगा तो मैं दूंगा, ये 50,000 तो आप ले लो, और बाद जो बचे उसके लिए आप मेरे से मूल्य दिखा लो, लिखित करा लो, और जब मेरे पास हो उस वक्त में आप कान पकड़ कर कह लो, और आपकी इच्छा हो तो हमारे जो लड़के हैं इनको बेच दो, उनको बिक्री करके मैं आपको चुका सकता हूं, और मेरी जो स्त्री है वो आपके यहां समझो सेवा का काम कर सकती है, बर्तन मान सके, रसोई बना देगी, उसको खाने भर के बाद जो बचे वो आप जमा कर दो, और मुझको नौकर रख लो, या आपको एक प्रकार से विश्वास मेरे ऊपर हो तो एक आदमी आपका रख दो, कुछ रुपया लगा दो उस काम में, और रुपयों का हिसाब किताब वो ही रखें, और मुझको खाने भर का दे दो, बचे हुए सब आप जमा करें। ये मेरी प्रार्थना है कि घाटी लग जाए तो घाटी में मेरी पंक्ति नहीं, चाहे आप यूं कर लो कि एक रुपया पैदा हो तो खर्च लागने के बाद जिसमें मेरी खुराकी भी शामिल है, खर्च लागने बाद जो बच जाए उसमें महाजन का 12 आना और मेरा 4 आना नफे में। मैं नफे का हकदार हूं, घाटे का नहीं, क्योंकि मैं 4 आना में अपना संतोष कर लेता हूं, और वो 4 आना भी अपना समझ लो कि हमारे जीव के खाते में जमा कर दो, उनको एक पैसा भी नहीं थे, और इसके थोड़ा और कोई आपके समझ में आवे तो वो कर। तो जितने महाजन हैं समझ लेंगे कि इसने घर में रुपया चुराया नहीं, वो कहता है कि मैं आज विश्वास के लायक नहीं हूं, मेरा कहीं रुपया पड़ा हो तो आप बच्चा दे बोलो, मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी स्त्री का घेर और ये मकान और ये हमारे घर के मन जो बर्तन और जो कुछ दुकान का फर्नीचर और ये सब जो कुछ बारदाना वगैरह सब लेकर के 50,000 रुपया होता है, ये 50,000 रुपया रुपये में 8 आना लेकर के मैं फर्ज भी नहीं चाहता, अपने खाते में 8 आना जमा कर लो और मेरे से बाकी के रुपयों का लिखा, तो हमारे संघ में कोई भी ऐसा महाजन नहीं होगा कि भी नहीं हम तो तुमको कैद ही कराओ। और कोई कैद करावे तो वो बड़ा खुश है, इसलिए खुश है कि महाजन को इसमें संतोष है, कैद में जाना मेरे लिए न्याय है, किंतु इस बात का साथ साथ में दुखी इस बात का है कि मेरे को कैद कराने से समझो कि मेरे को खाना देना होगा और बदले से मेरे से काम लिया नहीं जाएगा, ये मेरे दुख है। अपने घर में कैद कर लो और समझो कि काम कराओ मेरे से, काम कराकर के 200 रुपये आप रख लो, तो कोई भी आदमी नहीं करेगा इसको तो जेल भेजना ही है, तो जेल जड़ाई दुर्गति है या नरकों के वहां जाना या त्रिकोणी में जड़ाई दुर्गति है, तो भगवान उसको भगवान हमारे महाजन है वो हमारे को कभी नरकों में नहीं गए। हम लोगों के ऋणी हैं तो संसार के भाई लोग भी हमारे पर दया करते हैं और कभी हमारे को कैद नहीं कराते और नहीं करा सकते, क्योंकि जब मैं सच्ची नीत से थी सर्वस्व लेकर के भी और बाकी का देना मैं चाहता हूं, चाहे मेरे पर नाश कर दीजिए डिग्री करा लो, उसमें ये बात है कि डिग्री कराने से थी जो राज का जो मसूल भरना पड़ेगा और एक प्रकार से किसी खर्च लगेगा वकीलों का और का वो मेरे सिर पर चलेगा, और अधिक दिन मुझको थोड़ा कटना पड़ेगा तो उस ऋण से मैं दूर होऊंगा, पर महाजन की इसमें प्रसन्नता है तो मैं खुशी के साथ कहता हूं कि आप डिग्री करा लो, मेरे से लिखा पट्टी कर लो, अदालत में जाकर के जैसे महाजन को संतोष हो कर लो, जब मेरे पास में हो ले लो, तो इस प्रकार की जिसकी अच्छी नीयत है, जिसका हृदय से यह भाव है, भला उसको कुल अपना कैद करा सकता है। तो इस प्रकार की जो जिसकी नीयत है ना, उसको भगवान भला कैसे कैद करें, कैसे कैद में डालेंगे। तो भगवान का ये खाना है, ये नरक यू तो भोष है किंतु 28 नरक प्रधान है, और उनकी संख्या कहीं कहीं अधिक भी आती है, और 84 लाख योनियों के बीच की मां अधिकांश में त्रिकयोनियां आई है। तो त्रिकयोनी के बीच में गिराना, वो कैद खाना में भेजना है, और नरक में गिराना, कैद खाना में भेजना है। तो भगवान कहते हैं कि ये ताप उसकी दुर्गति कभी होती ही नहीं, माने एक प्रकार से दुर्गति रुक जाती है, उसके पाप है ना, वो पाप वो ऋण है, और वो एक प्रकार से सिर के ऊपर ऋण चुकाना है। तो भगवान उसको मौका देते हैं दूसरा मनुष्य का जन्म देकर करके, और उससे साधन करा करके उसको मुक्त करते हैं। इतने भगवान दयालु है। तो ये बात आपको मैंने बतलाई, क्या बात बतलाई, एक ही बात बतलाई कि मन को परमात्मा के मां समावेश कर करके के, और फिर परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन नहीं करना, ये बात बतलाई। इस एक ही बात से आपका काम एकदम सिद्ध हो सकता है। ये दूसरे नंबर बात बतलाई कि मन बस में नहीं है, इस कारण से यदि इधर उधर चला जाए तो उसी वक्त उस मन को वहां से हटाकर अपने बस में कर करके फिर परमात्मा में जाकर के लगाना, ये अपना काम। तो मन में ये जोश रखना चाहिए कि एक बार परमात्मा में लगा दिया तो वो मन जागा ही नहीं। परमात्मा के मां कितना भारी आनंद है। कल आपको टीवी के ऊपर पूर्ण घंटा के मां करीब बताया था आनंद के ध्यान की बात। तो साधन काल के मां आनंद और सिद्ध अवस्था में तो है, भला उसमें हर वक्त आनंद आता ही होता है तो वो ध्यान छूट ही कैसे सकता है। और ध्यान छूटता है तो ये समझना चाहिए कि परमात्मा के आनंद स्वरूप का ध्यान होया ही नहीं। नहीं तो जब प्रत्यक्ष के मां आनंद का अनुभव होता है तो ऐसे आनंद का ध्यान मनुष्य कैसे छोड़ सकता है, कैसे उसे छूट सकता है। तो इस प्रकार से थी उसका कल सायंकाल के वक्त के बीच के मारा आपने टीवी के ऊपर जो अणुओं का ध्यान बतलाया गया था, साधन के समय में अपार अणु ऐसी मानव बने बतलाया और उसका अनुभव होता रहे, तो समझो कि किसी की भी सहमत नहीं है कि उस आनंद से उसको कोई हटा सके। रोग बीमारी भी उसको नहीं हटा सकते, उसके शरीर को कोई काट भी डाले तो एक प्रकार से क्यों हटना चाहिए। यदि वास्तव के बीच के वहां परमात्मा के स्वरूप के वहां आनंद स्वरूप में स्थिति हो गई है, उसका अनुभव हो गया है, लिंगता परम लाभन मनते नादी कंकत है यशी निश्चितों ने दुखे ने गुरुनाथ विचार लते युवक द्वारा जिस आनंद को पा करके और जिससे बढ़कर और कुछ भी नहीं समझता है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं समझता है, जिस आनंद में स्थित होने पर भारी से भारी भी शरीर के ऊपर आघात पड़े, दुख पड़े, कोई शरीर को काट डाले या जला दे गए तो भी एक प्रकार से वो उस आनंद से विचलित नहीं होता और न गुणों के द्वारा किया जा सकता, न खुद होता और न उनके द्वारा किया जा सकता। इसके पूर्व के श्लोक में साथ यह बात कही है, सुगुणा पंक्ति कम यह तक और बुद्धि ग्राज में तिंद्रियम यत्रण से वायम स्थित सवती तत्त है। स्थिति जाता है किसका श्लोक है, वो एक ही प्रकरण है। यंग द्वारा परम लाभन ये 22 का श्लोक है, समय समय रूप में ये जो बता गया 25 का श्लोक है, और जब ये मन चला जाए तो उसको बार बार जाकर लगा देना चाहिए ये तो ये प्रवेश करती ये 26 का श्लोक है, उसी प्रकरण का विषय में कह रहा हूं। तो आपको ख्याल करना चाहिए कि अतंत सुख है, जिस सुख की कोई सीमा नहीं है, और वो कैसा सुख है कि बुद्धि ग्राहन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो अपने ग्रहण करने में आता है, अतुल वही बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने में आता है। शुद्ध हुई सूक्ष्म हुई अच्छी हुई बुद्धि के द्वारा वो ग्रहण करने में आता है। इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रिया कि वहां पूछ नहीं, व्यक्ति अत्र मैंने जिस काल के वहां उस परमात्मा के इस आणु स्वरूप को सुख रूप को अतंत सुख रूप को अतंत सुख करो आनंद करो, एक ही बात ऐसा जो अंग में जो सुख का जो स्वरूप भगवान का है जिस काल में उसका अनुभव करता है फिर वो तत्व से चलायमान नहीं होता, माने उस स्वरूप से चलायमान नहीं होता तत्व माने स्वरूप, बस उसके बीच के मां अगर स्थिर हो जाता है। वो जो ध्यान बताया कल आपको उस ध्यान के मां जब मस्त हो जाता है तो न तो वो ध्यान कोई छुटा सकता न वो खुद छोड़ सकता। वैसा ध्यान यदि रात और दिन एक 24 घंटा लग जाए तो हमारी समझ के बीच में उसको परमात्मा की प्राप्ति होनी पड़े, यानी उसको परमात्मा अवश्य मिले। किंतु 24 घंटा में एक क्षण भी उस ध्यान को न छोड़े, और ये समझना चाहिए कि वो मरेगा नहीं, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर एक प्रकार से इस शरीर के मां उसके मन बुद्धि आने, और जब तक इसके प्राप्ति के भोग हैं तब तक इस शरीर में भुगते रहेंगे, किंतु वो प्राप्ति के भोग भोगने के समय में कोई उसमें भोगता नहीं रहेगा, और उसे सुख दुख से सुखी दुखी नहीं रहेगा, और उसमें राजद्वेष नहीं होंगे, और उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का विनाश हो जाएगा, तब सारे विकारों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाएगा, और सारी संसार उसको सपने में दिखेगी। परमात्मा का जो अस्तित्व है, जिस परमात्मा के अन्न स्वरूप उसको प्राप्ति हुई है, उसका तो एक प्रत्यक्ष भाव उसमें प्रतीत होगा, एकदम प्रत्यक्ष उसका होनापना। और उस परमात्मा को छोड़कर के बाकी जो शरीर है अंतःकरण है देश काल है जितने जो पदार्थ है इनका प्रत्यक्ष अभासा प्रतीत होगा, इन सबकी तो काल्पनिक सत्ता और परमात्मा के स्वरूप की वास्तविक सत्ता, परमात्मा का तो भाव और इन सब का अभाव। जैसे किसी के नेत्रों के मां दोष हो और उसको आकाश के मां समझो तिलमिले से दिखे तिलमिले से दिखे, तो ये जो तिलमिले से जो दिखते हैं उनका देखने के समय में अभासा प्रतीत होता है, ये निश्चय होता है कि नहीं है, और आकाश के मां भाव की आकाश है, आकाश तो है और ये तिलमिले या कहो जारे कहो ये आकाश के मां नहीं है। तो इस जारे की जो तो आकृति वाले संसार और आकाश की जो उस परमात्मा का अनुमय स्वरूप, तो उसका भाव उनका भाव ये प्रतीति हो कर कि उस समाधि से उतर करके जब इस शरीर के मां जागृत अवस्था में आवेगा तब व्युत्थान अवस्था में आवेगा, तब वो समाधि और ये व्युत्थान समाधि के भीतर के मां शरीर और संसार का किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। जो निर्विकल समाधि है तो वहां कोई प्रकार की कल्पना नहीं रहती, तो उसे ब्रह्म के स्वरूप के मां परमात्मा के स्वरूप के बीच के मां जब इस प्रकार की स्थिति होगी, यानी इसीलिए भगवान कहते हैं कि आत्म संस्मरण कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत्, मन को उस आत्मा में यानी परमात्मा में स्थित कर करके और उस परमात्मा के सिवा कोई किसी का भी चिंतन न करे, ये बात उसको बतलाई। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा बतलाया जाता है आपकी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ काम होता है नेत्रों से कान से वाणी से और उसके साथ में आपका मन नहीं है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, चाहे पैरों से, हाथों से, कानों से, नेत्रों से, वाणी से, एक प्रकार से कोई भी क्रिया होती है, जब मनुष्य को आपने जोड़ नहीं देता, मनुष्य के साथ में नहीं है, तो वो कुछ नहीं है। और इंद्रियों का संबंध नहीं होकर के भी यदि आपका मन जो है चिंतन करता है, आपके मन में तुलना होती रहती है, तो एक प्रकार से आपके लिए महामानी है। तो इसलिए मूल जो जड़ है मन है, तो मन के भीतर में संकल्प विकल्प आपके होते ही रहते हैं। तो मन के मन सात्विक राशि तामसी जो संकल्प विकल्प होते हैं, पहली बात तो यह है कि राशि और तामसी संकल्प विकल्पों का अभाव करके के सात्विक संकल्प होने से, सात्विक संकल्प क्या है कि भगवान के नाम जप का, भगवान के स्वरूप के ध्यान का, सत्संग का और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय का, ज्ञान वैराग ईश्वर की भक्ति विषय, ये सात्विक संकल्प है, तो ये आपके लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं। किंतु ये जो मैं आपको बताई ये तो महालाभदायक है, वो तो सात्विक से भी परे की बात है कि केवल मात्र एक प्रकार से उस परमात्मा के बीच में मन को समावेश कर दिया और उस परमात्मा के स्व शरीर या संसार का चिंतन किया ही, ये और बहुत ऊंचे दर्जे की चीज। तो इसलिए आपको ये बात मैंने बतलाई कि यदि एक बात आपको ऐसी बतलाई जाएगी यदि उसको आप काम में लाओगे तो आपके कल्याण में कोई शंका की बात। मन परमात्मा में समावेश करने के बाद में और यदि संसार का या शरीर का चिंतन हो भी जावे अपनी कमजोरी के कारण से, तो फिर अपना यही कर्तव्य है कि उसको फिर बार बार ला करके लगाए और मन में जो चोट रखे कि अब की बार जो मैं मन को लगाता हूं तो फिर संसार का संदर्भ नहीं होगा। और दो बार जब एक प्रकार से फिर भी चला गया तो तीसरी बार खूब और अपुंबल का जोर लगाना चाहिए, जोर लगाना चाहिए कि अब की बार एक प्रकार से अपने मन को ऐसा लगा देना है शरीर और संसार का कभी चिंतन होने ही नहीं। जैसे अर्जुन सूर्यवीर था ना, सुधर्मा के साथ जब युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन को भगवान ने उपालन दिया, अरे मैं तेरे रथ पर बैठा हुआ हूं और ये सुधर्मा जो है सो मेरे बैठे हुए तुम्हारे रथ को एक प्रकार से पीछू सुहास सरका देता है बाण मार करके के। मैं नहीं हूं तुम तो मैं मालूम तुम्हारी क्या दशा है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तीन बाण से सुधर्मा को मार डालू और यदि नहीं मार डालू तो मैं अग्नि जला करके उसके मैं भस्म हो जाऊंगा। ये खबर सुधर्मा को पहुंची तो सुधर्मा ने कहा मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उन तीनों बाणों को मैं व्यर्थ नहीं कर दूं तो अग्नि जलाकर इसके मन में प्रवेश कर दूं। दोनों भगवान के भक्त ये कथा आती है द्रोणी अश्वमेध पर्व की। फिर बात क्या था, अर्जुन ने एक बाण चलाया जिस पर अपना बल बुद्धि तेज तप सब रखा। सुधर्मा देख रहा है कि हाँ अर्जुन का बाण आ रहा है, धनुष से छूट गया। उसी वक्त सुधर्मा अपने उसको काटने के लिए बाण छोड़ते हैं, भगवान का नाम उच्चारण और कुछ नहीं। तो भगवान का नाम जो है सो भगवान है, तो उस नाम के प्रकार से थी अर्जुन का बाण आकाश में कट जाता है और दो टुकड़ों होगी अर्जुन के चेहरे पर व्यास जाता है। भगवान आश्वासन देते क्यों तुम तुम्हारा जैसे एक बाण कट गया है दो और कट जाएंगे तो खत्म। अरे जो एक काट दिया है तीन में काट कर बोले मैं तू बल रहा हूं, तू अपने बल बुद्धि और तेज को और अपने जो कुछ शुक्र थे वो सब को रख दे और मैं भी अपना उस पर बल और ये सब रखता हूं, तुम चिंता मत कर। ठीक है रख दिया। फिर दूसरा बाण धनुष पर चला करके छोड़ा उन्होंने तो भगवान का मैं उच्चारण करके बाण छोड़ दिया, छोड़ने से दूसरा बाण भी कटकर दो टूक हो गई कि अब तो होश वहां सुध गए। भगवान ने कहा क्यों भैया? बोले महाराज जब इतना आपका मेरा बल था, तेज था, तब था, जो वो भी एक प्रकार से सुबह करके गिर गया, तो अब तो एक ही बाण रह गया। तो भगवान ने कहा कि तुम डर मत, अब की बात तेरे बाण के ऊपर मैं छोटा हूं, डाल करके बैठ सकू। इस प्रकार से अर्जुन को हिम्मत बनाई, अर्जुन निराश हो गए। भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि मैं खुद तेरे बाण के ऊपर बैठता हूं। तो बाण के अगले भाग में भगवान विराजमान हो गए, अर्जुन ने धनुष पर बाण चलाया और उसको मस्तक को लक्ष्य बना करके आपने मस्तक काटने के लिए छोड़ दी। सुरमा ने देखा कि तीसरा बाण अर्जुन के धनुष से छूट रहा है, अपने धनुष के ऊपर वो बाण छोड़ा कि अर्जुन के उस बाण का भी दर्द कर, तो गैर का हिंसा है वो तो गिर गया विश्व के मन, और आगे का जो खून है, आगे का जो बाण का आवला भाग है, वो क्या करके सुब्रह्मण्य के गले के माने गले में लग करके सिर जो है कट गया, और कट करके वो सिर उछल करके भगवान के चरणों में आकर के पड़े। गुरु बैठे की प्रतिज्ञा भगवान ने सच कर, भगवान चाहे तो पूछ गई बात तो ये संभव नहीं। तो ये एक बात याद आ गई, तो प्रकरण में प्रकरण आपको बता दिया, बताने का अभिप्राय यह है जैसे सुधरना के मन में यह बात थी कि भगवान का नाम उच्चारण करके मैं जब बाण छोड़ूंगा तो तीनों बाण अर्जुन के मैं काट दूं, और वो हुआ। जब भगवान के नाम कितनी भारी महिमा है तो उस भगवान के नाम को एक प्रकार से थी, वो तो अर्जुन का बाण था ना, और यहां हमारे ऊपर तो ये माया के बाण चलते हैं कि जिसकी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, जितनी माया की शक्ति बताई है किंतु भगवान के भजन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। देवी हिंसा गुरु में मम माया दुरत्या मानव प्रबद्धम के माया होता हम कर्म की थे सफल तम तुम गुण मेरी माया कर्म को बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरी शरण आ जाता है मुझको जो वर्षा है वो इस माया से चल जाता। तो भगवान का जो भजन भजन क्या, भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान, उसमें मैंने आपको जो बताया है वो भगवान के स्वरूप का ध्यान बताया है। तो अपने ध्यान का लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान के विषय के बीच के बाद भागवत के एकादश स्कंद में कथा आती है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उस 24 गुरुओं के में एक शिकली कार को भी गुरु बनाया। शिकली कर जो है माने जो धार देने वाला है, एक शिकली कर जो है तो बाण के ऊपर धार दे रहा था, उसी काम में उसका मन लगा हुआ था। उस समय में उसकी दुकान के आगे से सुंग की राजा की सवारी निकल गई, उसके बाद राजा के लोग उन्हें आदर पूछा कि राजा की सवारी क्या इस तरफ से गई? वो बोला मुझको मालूम। अरे राजा की सवारी तो कोई एक दो आदमी नहीं जाते हैं, सैकड़ों आदमी राजा के साथ में रहते हैं, लक्षर का लक्षर रहता है, बहुत सेना और सिपाही लोग बहुत रहते हैं, वो तो एक प्रकार से समझ की सब आदमियों को मालूम हो जाता है। बोला अरे मुझको मालूम, मेरा जो मन है वो बाण के शिकर करने में लगा हुआ था, इसलिए मुझको बिल्कुल मालूम नहीं कि राजा की सवारी गई या नहीं। उस समय में दत्तात्रेय जी महाराज वहां खड़े हुए देख रहे, जो दत्तात्रेय जी ने कहा वाह, उसको अपने मन के मन गुरु बनाया। गुरु का मतलब यह है कि इसने जिस प्रकार से बाण के वहां ध्यान लगाया तो परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए तो ऐसे लगाना चाहिए कि जो कौशिक निकलने में है। तो हम लोग एक इस बात को दत्तात्रेय जी ने जो 24 पदार्थों से 24 जीव प्राणियों से और जड़ चेतन सब से 24 बार धारण करी, उसमें एक बार किया जो सबसे प्रधान नियम के में प्रतिवृत्ति नहीं होगी क्योंकि परमात्मा के ध्यान का विषय है। तो इस प्रकार से कि हम मन को उस परमात्मा में लगा दें फिर शरीर संसार को ऐसा भूल जाए कि शरीर का पाठ भी हो जाए तो हमारा निश्चय कल्याण हो जाए। अंतकाल से मां में वह अस्तमन मुक्त आके रे हम यह प्रयाति से मद भावन याति ना सत्म से। अंतकाल के समय में भगवान कहते हैं कि जो मेरा समय करता हुआ देह को त्याग कर जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। ऐसा ग्रामी सिद्धि पार्थ नहीं हम प्राग विमुजति स्थित आश्यामंत काल ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। ये बात भगवान ने गीता की दूसरी अध्याय से भाते के श्लोक में कही। या ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति है वो ब्राह्मी स्थिति, इसको पाकर के कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। मरने के समय में भी एक क्षण के लिए ऐसी स्थिति हो जा रहे तो वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे समय में हमारी मृत्यु हो जाए तो हो भाग्य है, किंतु एक प्रकार से अपने वो जीवन मुक्त हो जाता है, मरता नहीं। फिर उसके शरीर के मन जो मन बुद्धि आ जाती है और जितने तक उसकी प्राप्त रहती है जीता रहता है।